हरे कृष्णा सभी भक्तों से।
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के इस वर्ष के बहुत ही विशेष गौड़ीय वैष्णवों के लिए हम साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण महोत्सव श्री गौर पूर्णिमा। श्रीपाद रूप गोस्वामी इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए एक सुंदर प्रार्थना रची है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। वो कहते हैं हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आपका अवतार हुआ है महावदन्याय रूप में। वदन्याय का अर्थ होता है वो व्यक्ति जो बहुत दानशूर हो, दानवीर हो। यहां पर रूप गोस्वामी कहते हैं केवल आप वदन्याय नहीं है, महावदन्याय, महादानवीर। तो मानो श्री चैतन्य महाप्रभु वो रूप गोस्वामी से पूछें कि भाई, मैं तो एक भिक्षुक के रूप में आया, मैं तो एक सन्यासी के रूप में आया, तो एक सन्यासी, एक भिक्षुक, वो किस प्रकार का दान दे सकता है? तो रूप गोस्वामी कहते हैं आगे, कृष्ण प्रेम प्रदायते, कि आप कृष्ण प्रेम का दान दे रहे हो। अब इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति को दान देता है तो दान वही वस्तु देगा जिसमें कुछ मूल्य हो, कुछ मूल्यवान वस्तु। कोई भिखारी को भी कुछ देता है तो कुछ मूल्यवान वस्तु देता है जो उसके काम आ सके। तो इस पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु क्या है या कौन है? कृष्ण और कृष्ण प्रेम। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, आप महावदन्याय इसलिए हो हे श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि आप कृष्ण प्रेम का दान कर रहे हो। तो मानो चैतन्य महाप्रभु पूछें कि भाई कृष्ण प्रेम का दान तो कृष्ण प्रेम या कृष्ण ही कर सकते हैं ना। वो जो कृष्ण प्रेम का धन, वो स्वयं कृष्ण के पास होना चाहिए। मैं तो एक कृष्ण भक्त हूं। तो रूप गोस्वामी आगे क्या कहते हैं, कृष्णाय। आप हालांकि गौर वर्ण में आए होंगे, हालांकि आप एक सन्यासी के रूप में अवतरित हुए होंगे, परंतु आप ही हो वो कृष्ण। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, इसलिए आपका नाम है कृष्ण चैतन्य। आप केवल कृष्ण नहीं हो, कृष्ण से कई गुना ज्यादा क्या हो आप? कृष्ण की चेतना देने के लिए आए। तो अब यदि हम भगवान श्री कृष्ण जो कि द्वापर युग में अवतरित हुए और इस कलयुग में वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए, तो दोनों में अंतर क्या है? रूप गोस्वामी कहते हैं, एक तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा दानवीर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो अवतीर्ण हुए, उन्होंने अपनी लीला की और लीला करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपने धाम चले गए। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु वो अवतीर्ण हुए और वो अवतीर्ण हुए हमारे उद्धार हेतु, युग धर्म स्थापित किया उन्होंने और अपने नाम के रूप में हमारे साथ यहां पर हैं जब तक कि कलयुग रहेगा, वो हमें छोड़कर नहीं जाने वाले। और श्री कृष्ण की चेतना देने के लिए वो आए। तो श्रील प्रभुपाद ने ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन शुरू किया, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रील प्रभुपाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के इस स्वरूप को देखते हुए किए कि उनके आने का उद्देश्य क्या था, हमें कृष्ण चेतना देना। भगवान श्री कृष्ण का एक होता है दर्शन और भगवान श्री कृष्ण की एक होती है चेतना। दोनों में महत्वपूर्ण कौन सा है? भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन और भगवान श्री कृष्ण की चेतना। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, सब लोग फास्टिंग पे हैं आज लगता है, भूख लग रही है, पानी वगैरह पी लिए ना आप लोग? वो फास्टिंग तोड़ दिया ना, हो गया, वो चंद्रमा उदय हो गए। क्यों कृष्ण की चेतना ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यदि हमारे सामने भी आ जाएं, परंतु यदि हम भगवान श्री कृष्ण की चेतना में नहीं, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं, तो ये हमारे चरम चक्षु भगवान का क्या दर्शन कर पाएंगे? दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया, हां या ना? किया। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया केवल चर्म चक्षु से, बल्कि दुर्योधन की चेतना क्या थी? दुर्योधन की चेतना थी भगवान श्री कृष्ण को बंदी कैसे बनाऊं। जब भगवान शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने भगवान के विश्व रूप को बंदी बनाना चाहा। देखिए, दुर्योधन मूर्खता की पराकाष्ठा था कि यहां पर एक तो द्विभुज रूप भगवान का, उसमें इतना ऐश्वर्य, यहां पर भगवान अपना विश्व रूप दिखाए दुर्योधन को, और दुर्योधन की उद्दंडता देखिए कि उस विश्व रूप को बंदी बनाने के लिए उसने अपनी सेना को कहा। उस सेना भी आश्चर्यचकित हो गई कि ये दुर्योधन को हुआ क्या अचानक, वो भी थरथर कांप रही थी सारी सेना कि भगवान के विश्व रूप को बंदी बनाना। तो दुर्योधन ने विश्व रूप देखा, अर्जुन ने विश्व रूप देखा, दोनों में अंतर क्या था? चेतना का। दुर्योधन ने भगवान का विश्व रूप देखा द्वेष के द्वारा, उस चेतना में। अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा प्रेम की चेतना में। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, नमो महा वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर त्विषे नमः। आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आपका वर्ण गौर वर्ण है, परंतु आप वही कृष्ण हो, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण आप ही हो। आज के दिन ये जानना बहुत आवश्यक है कि श्री चैतन्य महाप्रभु हैं कौन। स्वयं श्री कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। केवल श्री कृष्ण नहीं है, वो श्रीमती राधा रानी के साथ। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो हर समय भगवान श्री कृष्ण की चेतना में रहती है, वो है श्रीमती राधा रानी। और उस भाव को लेकर राधा भाव द्युति सुविलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, श्री कृष्ण का स्वरूप है, भाव है श्रीमती राधा रानी का। तो आज का ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है जिसे मनाने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, तो सही मायने में इसे कैसे मनाया जाए? हम किसी के जन्मदिन पर जाते हैं, जन्मोत्सव पर जाते हैं, बर्थडे पार्टी पर जाते हैं, तो हम कुछ भेंट लेकर जाते हैं, है ना? उसके लिए कुछ भेंट लेकर जाते हैं। आजकल तो लोग केवल लिफाफा लेकर चले जाते हैं, अपना अपना खरीद लेना बस, हा? तो किसी के जन्मोत्सव पर किसी को भेंट यदि कोई देता है तो उसके पीछे उद्देश्य क्या, किस भावना में वो भेंट दे रहा है उस व्यक्ति को जिसका जन्मदिन है, कि ये जो मैं भेंट दे रहा हूं ये मेरे प्रेम का प्रतीक है। किसके प्रति? तुम्हारे प्रति, तुम्हारे प्रति प्रेम का प्रतीक है। और ये भेंट का स्वरूप ये है कि इस भेंट के द्वारा तुम्हें प्रसन्नता मिले। तो दो इसके स्वरूप देखे गए हैं भेंट के, एक तो मेरे प्रेम का प्रतीक है तुम्हारे प्रति, और प्रसन्नता देने के लिए। यदि कोई ऐसी भेंट दे जिसमें कोई प्रेम नहीं और अगले व्यक्ति को उस भेंट से कोई प्रसन्नता न मिले, तो ऐसे भेंट के फायदा क्या? इसे मान लो कि हमारे मंदिर के किसी ब्रह्मचारी को कोई कंघा दे भेंट में, हाँ? या शैंपू। तो भेंट भी वो उसका मायना सही होना चाहिए, उसका आशय सही होना चाहिए। तो हम सब एकत्रित हुए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के इस जन्मोत्सव में, आज उनका जन्मदिन। क्या भेंट लेकर हम आए, क्या भेंट हम उनको दे सकते हैं? अब देखिए, कई बार हम किसी को भेंट देते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार, कि उसके वो काम आएगी वो वस्तु। अब स्वयं भगवान को हम कौन सी वस्तु दे सकते हैं जो उनके काम आएगी, या कोई ऐसी वस्तु है जो उनके पास नहीं है? कोई ऐसी वस्तु है जो उनके पास नहीं है कि हम उन्हें देखकर उनको पूर्ण करें? इस भौतिक संसार में तो हम किसी को कुछ देते हैं तो वो व्यक्ति अपूर्ण है, उसे पूर्ण करते हैं कुछ देकर। परंतु भगवान श्री कृष्ण, श्री चैतन्य महाप्रभु, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाव पूर्णमेवावशिष्यते, सब कुछ पूर्ण है उनका। वो पूर्ण है, उनसे जो कुछ उद्धृत होता है वो सब कुछ पूर्ण है। उनका नाम, उनकी लीला, उनके गुण, उनका धाम, सब कुछ पूर्ण है। और हम अपूर्ण। तो आज के दिन हम हमारी जो शरणागति है वो पूर्ण रूपेण भेंट में दे सकते हैं जो उनके पास अब तक नहीं मिली। उनको क्या नहीं मिली? हमारी पूर्ण शरणागति। थोड़ी बहुत शरणागति कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में यहां वहां हम देते रहते हैं, थोड़ा देते रहते, थोड़ा रखते रहते अपने साथ। परंतु भगवान प्रसन्न होंगे कौन सी भेंट से? पूर्ण शरणागति, अपना सर्वस्व। तो आज मैं श्री चैतन्य चरितामृत से एक ऐसे भक्त की चर्चा करना चाहूंगा जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को वास्तविक रूप में प्रसन्न किया। अपनी एक बहुत ही शुद्ध भेंट देकर, यही उद्देश्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना यही उद्देश्य है। तो ये प्रसंग है चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकलते हैं और दक्षिण भारत में श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंचते हैं रंग क्षेत्र अर्थात श्रीरंगम। आप में से कितने श्रीरंगम गए हैं? श्री रंगनाथ जी का दर्शन आप लोगों ने किया होगा। इतने सुंदर विग्रह भगवान के, 18 से 20 फुट लंबे हैं वो, और शेषशायी विष्णु कि उस मुद्रा में श्री रंगनाथ जी अपने भव्य मंदिर में विराजमान रहते हैं। तो चातुर्मास्य का समय, चार जिसे चौमासा भी कहते हैं, चातुर्मास्य के समय श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की इस यात्रा में श्रीरंगम पहुंचे। और चैतन्य महाप्रभु रोज हर दिन रंगनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते। श्रीरंगम के रंगनाथ जी के मंदिर के बाहर एक साधारण सा निर्धन ब्राह्मण बैठकर भगवद गीता का पाठ किया करता। तो ये पूरा प्रसंग है श्री चैतन्य महाप्रभु और इस ब्राह्मण के बीच में क्या आदान प्रदान हुआ और इससे हम क्या शिक्षा लेते हैं। तो आज के हमारे प्रवचन में हम इस श्रीरंगम के ब्राह्मण से 6 शिक्षाएं उन्होंने क्या दी वो सीखेंगे, और छह पुरस्कार इन्हें चैतन्य महाप्रभु ने जो दिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने इनसे एक भेंट ली। कौन सी भेंट? इनके शुद्ध प्रेम की भेंट, इनके शरणागति की भेंट। और इसके बदले में श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें पुरस्कार किया, पुरस्कृत किया, पुरस्कार दिया। तो आज के दिन यदि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पुरस्कृत होना है, तो हमें यह सीखना होगा कि ये श्रीरंगम के ब्राह्मण, इन्होंने अपने उदाहरण से श्री चैतन्य महाप्रभु को कैसे प्रसन्न किया। आप लोग सीखना चाहेंगे? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में इस प्रसंग की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम वो कहते हैं, सेई क्षेत्र रहे एक वैष्णव ब्राह्मण। सेई क्षेत्र, सेई क्षेत्र का अर्थ है श्री क्षेत्र, रंग क्षेत्र में रहे एक वैष्णव ब्राह्मण। इनको केवल ब्राह्मण नहीं कहा उन्होंने, वैष्णव ब्राह्मण। देवालय आसी कोरे गीता आवर्तन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, छह शिक्षाएं हम क्या सीखते हैं इस श्रीरंगम के ब्राह्मण के उदाहरण से। तो इस प्रथम श्लोक में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो वैष्णव ब्राह्मण श्री क्षेत्र में रहने वाले देवालय करे गीता आवर्तन। यहां पर कहा गया है कि वो देवालय में, अर्थात श्री रंगनाथ जी के मंदिर में, देवालय में वो गीता आवर्तन किया करते थे। तो सबसे पहली शिक्षा हम क्या सीख रहे हैं, देवालय का प्रयोजन क्या होना चाहिए। अब देवालय का अर्थ क्या है? जैसे बहुत से आलय, इनके विषय में हमने बहुत सुना है, पुस्तकालय। पुस्तकालय में क्या आपको मिलेगी? पुस्तकें। मदिरालय, मदिरा का आलय। भोजनालय, जहां पर भोजन मिलेगा, भोजनालय। विद्यालय, ग्रंथालय, मत्स्यालय, मदिरालय, देवालय। क्या? हाँ, पूरा संसार ही रुग्णालय। और केवल रुग्णालय नहीं, दुखालय। तो यदि पुस्तकालय में आपको पुस्तकें मिलेंगी, भोजनालय में आपको भोजन मिलेगा, तो देवालय में क्या? देव पटेल या देवानंद मिलेंगे, कौन मिलेगा आपको? तो देवालय का प्रयोजन क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम प्रधानभूत भगवान वहां पर होने चाहिए। तो ये हम सीखते हैं कि जब हम मंदिर जा रहे हैं, तो मंदिर जाने का प्रयोजन या देवालय जाने का प्रयोजन ये जान लेना चाहिए कि वहां पर हम कोई लिस्ट लेकर न जाएं कि ये मेरा पूरा करो। जैसे अमेरिका में जो वेटर होते हैं, वेटर, रेस्टोरेंट के वेटर होते हैं, उनको बेल बॉय बोलते हैं। बेल बॉय, बेल बॉय का अर्थ है वो बेल मारो, वो बॉय आएगा, बेल बॉय। तो फिर उसको बोलो चलो ये सब लेकर आओ मेरे खाने के लिए आज, तो उसको कहते हैं बेल बॉय। तो वो हाथ में मेन्यू कार्ड रखता है और बेल मारता है, बॉय आता है, उसको मेन्यू कार्ड दिखा दे, ये सब लेकर आओ। तो कई बार देवालय में कलयुग में भगवान को कॉस्मिक बेल बॉय बना लिया जाता है। कौन सा बेल बॉय? कॉस्मिक बेल बॉय। घंटी भी होती है ना, इसलिए कई बार इस्कॉन के मंदिरों में लोग आ जाता था, घंटी किधर, घंटी घंटी ढूंढते रहते हैं। भगवान साइड में, घंटी बताओ पहले, घंटी कहां है? श्रील प्रभुपाद को जब पूछा गया कि ये आपके इस्कॉन के मंदिरों में सब जगह हम देखते हैं अंदर घुसते घंटी मारनी होती, आपके मंदिर में घंटी नहीं दिखती, आपके इस्कॉन के मंदिर में घंटी नहीं दिखती। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि घंटी को आप देखो तो वो घंटी के अंदर एक वो छोटा सा वो लटकता रहता है जिसकी वजह से घंटी बजती है ना, उसको इंग्लिश बोलते क्लैपर। तो उसका एक वो बाहर कॉनिकल सरफेस होता है और उसके अंदर वो क्लैपर होता है, तो उसको हिलाने से वो अंदर वो क्लैपर ना हो तो कोई आवाज नहीं आएगी ना, कितना भी हिलाते रहो। तो श्रील प्रभुपाद कहे कि दिस माउथ इज लाइक द कॉनिकल सरफेस ऑफ द बेल एंड द टंग इज द क्लैपर एंड व्हाट इट कीप्स क्लैपिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो इस्कॉन के मंदिरों की घंटी कौन सी है? ये हर समय बजती रहनी चाहिए, हर समय बजती रहती है। तो जब हम देवालय की बात कर रहे हैं तो सर्वप्रथम वहां पर भगवान प्रतिष्ठित होने चाहिए, देव प्रतिष्ठित होने चाहिए। एक कहानी है कि एक गांव में एक देवालय था और एक निर्धन सा एक किसान शूद्र जाति का, उसकी इच्छा हुई भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वो देवालय में प्रवेश करने जा रहा था तो वहां के पुजारी ने उसे रोक दिया। पुजारी ने रोक दिया, कहा कि तुम भाई तुम नीची जाति के हो, तुम देवालय में प्रवेश नहीं कर सकते। तो अब ये बेचारा जो इतनी इच्छा से देवालय में भगवान का दर्शन करने के लिए प्रवेश करने जाने वाला था, रोक दिया गया। पूछा, भाई तो फिर क्या मुझे करना होगा कि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं इस मंदिर में? तो इस पुजारी, इस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हें 20 वर्ष मुझ जैसे शुद्ध ब्राह्मण का उच्चिष्ट खाना होगा, 20 वर्ष मुझ जैसे शुद्ध ब्राह्मण का उच्चिष्ट खाना होगा। उच्चिष्ट समझते हैं, उच्चिष्ट जूठा, वो खाना होगा और फिर तुम योग्य बनोगे। तो ये अब चले गए, ये निर्धन ये व्यक्ति चले गए और फिर एक हफ्ता एक महीने पश्चात इस ब्राह्मण ने, ये इतना घमंडी ब्राह्मण, इसने इस नीची जाति व्यक्ति को देखा जाते हुए, पूछा, भाई क्या हुआ, तुम आए नहीं मेरा उच्चिष्ट लेने? उसने कहा, नहीं मैं, आपने जो मुझे कहा उस दिन, उसके पश्चात उस रात भगवान मेरे सपने में आए। और भगवान सपने में आए? हाँ, आप ही के जो मंदिर के को भगवान है ना देव, वो मेरे सपने में आए और वो बोले कि कभी इस मंदिर में मत जाना, इस मंदिर में कभी मत जाना। क्यों भाई, क्यों भगवान ऐसा क्यों बोले? तो ये व्यक्ति इस पुजारी से कहता है, भगवान ने मुझे कहा इस मंदिर में बिल्कुल मत जाना, पिछले 30 साल से मुझे नहीं आने दे दिया, तुम्हें क्या आने देंगे। तो यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि देवालय, सबसे पहले देवालय का अर्थ होता है जहां पर भगवान को प्रमुखता दी जाए, वो है देवालय। और देवालय में होना क्या चाहिए, यहां पर इस श्लोक में बता रहे हैं, देवालय आसी कोरी गीता आवर्तन। देवालय में गीता का आवर्तन ये ब्राह्मण किया करते थे, गीता का आवर्तन अर्थात गीता का पाठ। तो मंदिर में भगवद गीता का प्रचार होना चाहिए। यदि भगवान की वाणी का प्रचार नहीं हो रहा मंदिर में, तब वो मंदिर मंदिर नहीं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ये पहचानना कि जब हम वास्तविक रूप में किसी देवालय का लाभ या फायदा उठाना चाहते हैं, तो यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं पहली शिक्षा देते हुए, पहली शिक्षा इस ब्राह्मण से ये मिली कि वो देवालय जाकर जो देवालय में करना चाहिए वो कर रहे थे, गीता का पाठ, गीता आवर्तन। अब श्रील प्रभुपाद का उदाहरण यदि हम देखें तो श्रील प्रभुपाद की ऐसी कृपा कि श्रील प्रभुपाद ने न केवल ऐसे देवालय खोले बल्कि श्रील प्रभुपाद ने घरों को देवालय बना दिया, लोगों के घरों में गौर निताई की स्थापना। देवालय में क्या होता है, अर्च विग्रह की पूजा होती है, उनका श्रृंगार होता है, भोग चढ़ता है और उनके विषय में चर्चा होती है। अब श्रील प्रभुपाद ने इतने अनगिनत तरीके से भगवान श्री कृष्ण भावना को फैलाया है, उसमें से एक है कि घर को देवालय बनाया। आप देखिए हरे कृष्ण आंदोलन से संबंधित कितने ऐसे गृहस्थ हैं जो अपने घरों में अर्च विग्रह को विराजमान कर कर अपने घर को देवालय बना लिया है। और फिर वहां पर होता क्या है या होना क्या चाहिए, अर्च विग्रह की सेवा और उनकी चर्चा, कृष्ण सेवा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा, ये तीन चीजें। अब कई बार जब इस प्रकार के मंदिर स्थापित होते हैं, देवालय स्थापित होते हैं, तो श्रील प्रभुपाद जब स्थापित कर रहे थे जुहू, मायापुर, वृंदावन, ऐसे बड़े बड़े मंदिर स्थापित कर रहे थे, तो बहुत से ऐसे द्वेषी लोग आकर श्रील प्रभुपाद से वो तकरार किया करते थे कि ये इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद के पास आया और उसने कहा कि ये भारत में इतने सारे मंदिर पहले से हैं, बंद पड़े हैं, आप उनको क्यों नहीं खोलते, उनको क्यों नहीं, आप ये नए नए मंदिर क्यों बना रहे हैं, इतने सारे मंदिर भारत में हैं, उनको अपना लीजिए, या आप अलग से आपका मंदिर क्यों खोलते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने देखा ये व्यक्ति अपने परिवार के साथ आया हुआ था, तो श्रील प्रभुपाद ने पूछा कि ये लड़का आपका है, तो हाँ मेरा है, मेरा लड़का है। इतने अनाथ घूम रहे हैं भारत में, ये पैदा करने की जरूरत थी। उनको गोद ले लेते, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो गया, हरे कृष्ण आपका मंदिर कब खुल रहा है, कब आऊं मैं। और एक आरोप लगाते, इतना खर्चा मंदिर के ऊपर करने की क्या जरूरत है, इतना खर्चा क्यों करने की जरूरत है। पिछले साल मैं लंदन में था तो वहां पर एक व्यक्ति के न्यूज में आर्टिकल आया। कई बार ये प्रश्न पूछा कि इतना खर्चा आप लोग क्यों करते हैं, तो यहां पे देखिए खर्चे की बात हो रही ना, तो यहां पे देखिए खर्चा किसके ऊपर किया जा रहा है। ये लंदन का एक व्यक्ति, इसने अपने कुत्ते के ऊपर देखिए कितना खर्चा किया, कुत्ते के ऊपर अपना, अपने वो छोटा सा इतना सा एक था, वो दिखाई भी नहीं देता, उसका सर कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, इतने बाल उसके सब चारों तरफ, उसकी पूंछ कहाँ है, सब कुछ उसके, उसकी फोटो भी है, उसकी फोटो हमने देखी। तो इस कुत्ते के लिए मुकुट बनाया इसने, क्राउन, कुत्ते के लिए क्राउन, सब अलग अलग प्रकार के रत्न हीरे जवाहरात उसमें सुसज्जित। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसकी कीमत कितनी होगी उस मुकुट की जो इस कुत्ते के ऊपर पहनाया था। आप थोड़ा सांस थाम लीजिए, 2.8 मिलियन पाउंड्स, अभी मैं अपने भाषा में कहूंगा फिर समझ में आएगा। 2.8 मिलियन पाउंड्स होता है 76 करोड़, कुत्ते के ऊपर मुकुट। उस कुत्ते को पता भी नहीं उसके सर पे क्या रखा है। और भगवान का आप अभिषेक कीजिए तो लोग बोलते हैं इतना दही इतना घी क्यों वेस्ट करते हो। इधर देखिए 76 करोड़ डीओजी के ऊपर, और आप विधि विधान से भगवान की पूजा करो जीओडी के ऊपर तो तुरंत प्रश्न। इसलिए वो क्यों हो रहा है, क्योंकि भगवत चर्चा नहीं करते वो। इसलिए ये कहा गया है कि क्योंकि वो भगवत चर्चा नहीं करते इसलिए वो समझते नहीं कि अर्चा पर इतना खर्चा क्यों होता है, अर्चा विग्रह पर। तो देवालय में गीता आवर्तन, एक तो देव प्रतिष्ठित होने चाहिए भगवान, और वहां पर भगवत चर्चा गीतावर्तन। तो ये सर्वप्रथम शिक्षा इस प्रसंग से हम सीख रहे हैं। इसके पश्चात वो किस प्रकार से गीता का आवर्तन अर्थात गीता का पाठ किस प्रकार से वो कर रहे थे ये ब्राह्मण, ये कविराज गोस्वामी कहते हैं। अष्टादश अध्याय पढ़े आनंद आवेशे, अशुद्ध पढ़े न लोक करे उपहासे। अष्टादश अध्याय का अर्थ है 18 अध्याय। गीता में कितने अध्याय पक्का, गीता में 18 अध्याय। तो ये रोज 18 अध्याय का अध्ययन करते, उसका पठन करते, पूरे 18 अध्याय रोज हर दिन अष्टाध्याय। आनंद आवेशे किस प्रकार से, एक तो आनंद आवेश में, और यहां पर कहा गया है अशुद्ध, वो जो संस्कृत का उच्चारण करते वो शुद्ध उच्चारण उनका नहीं होता, अशुद्ध उच्चारण उनका होता था। परंतु यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वहां के रंग क्षेत्र के जितने अन्य ब्राह्मण इस ब्राह्मण को अशुद्ध रूप से जब गीता का आवर्तन करते हुए वो देखते थे तो उपहासे करे, उपहासे मजाक उड़ाते थे, ये देखो ये गीता का पाठ कर रहा है, बोलना आता नहीं, संस्कृत सीखा नहीं और गीता का पाठ कर रहा है, तो वो उपहास करते थे। तो यहां पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दूसरी शिक्षा हम इस ब्राह्मण से क्या सीख रहे हैं कि हालांकि वहां के तथाकथित ब्राह्मण वो इनका उपहास, इनकी मजाक उड़ाया करते थे, परंतु ये आनंद आवेश, आनंद के आवेश में गीता का पाठ ही करते थे। तो ये समझ में आ रहा है कि जब हम कृष्ण भक्ति में लगते हैं तो एक परीक्षा क्या है कृष्ण भक्ति में लगने की या रहने की, लोग उपहास करेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे। बहुत बार हम जब प्रचार के लिए यहां वहां बाहर घूमते हैं तो लोग उपहास करते हैं, बंबई में तो बहुत, ए दम मारो दम आ गए, इस प्रकार से शुरू करते हैं पहले तो, हरे कृष्णा जोर जोर, हालांकि भगवान का नाम तो निकल रहा है परंतु उपहास के रूप में। अब यहां पर यह विशेष बात है कि हालांकि ये सब इनका मजाक उड़ाया कर रहे थे परंतु आनंद आवेश में ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे थे। श्रील प्रभुपाद जयपुर में गए और जयपुर में श्रील प्रभुपाद वहां पर कुछ बहुत विद्वान संस्कृत के पंडित वो श्रील प्रभुपाद से मिलने आए, तो श्रील प्रभुपाद ने अपनी एक शिष्या जिनका नाम था कौशल्या देवी, केवल वो 19 वर्ष की उस समय, अमरीकी वो महिला, उनको श्रील प्रभुपाद ने बुलाया और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि ये मेरी अमरीकी शिष्या हैं और ये पूरा ईशोपनिषद कंठस्थ जानती है संस्कृत। ईशोपनिषद यदि आपको पता है बहुत उसकी संस्कृत थोड़ी कठिन है। अब ये कौशल्या देवी ये एकदम सकपका गई कि इनके सामने, अब ये संस्कृत विद्वानों के सामने मुझे ईशोपनिषद के श्लोक का उच्चारण करना है संस्कृत इनके सामने, और उनको केवल 6 श्लोक आते थे, ईशोपनिषद में 19 श्लोक हैं, इन्हें केवल 6 श्लोक आते थे। तो प्रभुपाद ने कहा सो नाउ अवर कौशल्या देवी विल रिसाइट ईशोपनिषद स्टार्ट। तो उन्होंने ईशोपनिषद शुरू किया और वो प्रार्थना कर रही है, मन में प्रार्थना, क्योंकि 6 श्लोक आते हैं, वो मन में प्रार्थना कर रही है कि 6ठे श्लोक के बाद क्या होगा, ये सारे संस्कृत के विद्वानों के सामने श्रील प्रभुपाद मुझे प्रस्तुत किए तो मैं प्रभुपाद का नाम मिट्टी में मिला दूंगी। तो 1 श्लोक, 2 श्लोक बराबर वो बोल रही थी, 3 श्लोक, 4 श्लोक, 5 श्लोक, 6ठा श्लोक आ गया, 6ठा श्लोक, 6ठा श्लोक को उच्चारण कर रहे, जैसे ही 6ठा श्लोक पूरा हुआ श्रील प्रभुपाद ने कहा दैट इज ओके। सांस में सांस आई। तो ये सारे जो पंडित संस्कृत के ये कहे कि ये तो ठीक है कि ये अमरीकी ये महिला संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर रही है, उन्होंने कहा प्रोनंसिएशन इतना ठीक नहीं है, इसका प्रोनंसिएशन ठीक नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा उसका प्रोनंसिएशन ठीक नहीं होगा, उसका रेनंसिएशन बहुत अच्छा है, रेनंसिएशन, उसका जो रेनंसिएशन है वैराग्य जो उसने शरणागति भगवान के प्रति दिखाई, हर प्रोनंसिएशन माइट नॉट बी परफेक्ट बट हर रेनंसिएशन इज परफेक्ट। और इस कलयुग में भारत में हम देखते हैं बहुत से संस्कृत का उच्चारण बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसे हमारे एक भक्त बता रहे थे कि उनके परिवार में उनके परिवार वालों ने एक गणेश होम आयोजित किया था, होम जानते हैं ना, यज्ञ, तो गणेश होम आयोजित किया था, और जो व्यक्ति वो कर रहा था बहुत अच्छी से संस्कृत का उच्चारण कर रहा, ऐसे ऐसे मंत्र बोल रहा, किसी को समझ में नहीं आ रहा, और एकदम पानी की तरह वो उसकी वाणी बह रही थी। तो देखा गणेश होम करने के बाद ये भक्त बता रहे थे कि वो फिर थोड़ा कोने में गए और फिर गणेश बीड़ी पिए। तो काफी उनका मैचिंग था वो, गणेश होम के बाद गणेश बीड़ी। तो ये प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा हुआ, परंतु रेनंसिएशन किस प्रकार का रेनंसिएशन? तो यहां पर चैतन्य महाप्रभु क्या देख रहे हैं कि 18 अध्याय वो अशुद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी देखा अशुद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, परंतु आनंद आवेश, आनंद में, पूर्ण आनंद में वो पढ़ रहे हैं। उपहास उनका हो रहा है साथ साथ, परंतु फिर भी पूर्ण आनंद में वो पढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये दूसरी शिक्षा है कि यदि हमें ये जग उपहास से बचना है तो आनंद आवेश में भगवान का श्रवण करना चाहिए और आनंद आवेश में भगवान का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं केह हासे केह निंदे ताह नहीं माने, आविष्ट हन गीता पढ़े आनंदित मने। आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्रवण में एकाग्रता यदि हो तो उसका लाभ क्या होता है, कि वो जब इतने आविष्ट होकर श्रवण कर रहे थे गीता का, तो उस आविष्टता, उस एकाग्रता के वजह से वो इस पूरे संसार से ऊपर उठ चुके थे, समाधि में थे वो। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब शुद्ध प्रेम जागृत होता है और उस प्रेम के द्वारा जब कोई श्रवण कीर्तन भगवान का करता है तो वो उस इस भौतिक धरातल पर नहीं रहता, ही ट्रांसेंड्स द मटीरियल प्लेटफॉर्म। और उसका कारण क्या है? एकाग्रता। तो जब तक हम श्रवण कीर्तन में इस भौतिक धरातल पर हैं तब तक ये समझ लेना चाहिए कि एकाग्रता हमारी पूर्ण नहीं हो पा रही। जब एकाग्रता पूर्ण होगी तो ये जैसे कि इनके आसपास क्या चल रहा है कुछ भान नहीं, कुछ होश नहीं, पूर्ण आविष्ट। तो ये तीसरी शिक्षा कविराज गोस्वामी इन ब्राह्मण के द्वारा सिखा रहे हैं। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको देखा तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या देखते हैं? पुलक अश्रु कंप श्वेद यावत पठन, पुलक अश्रु कंप श्वेद, उनके शरीर में रोमांच, स्वेद अर्थात वो जो अष्ट विकार जिसको कहते हैं वो उनके शरीर में जागृत हुए। देखी आनंदित हैल महाप्रभुर मन, और इसे देखकर श्री महाप्रभु, श्रीमान महाप्रभु, इनका मन आनंदित हुआ। तो भगवद गीता की महिमा यहां बताई गई है कि कोई यदि पूर्ण ध्यान से एकाग्रचित होकर यदि भगवद गीता का भी अध्ययन करता है तो उसे ये अष्टविकार मिल सकते हैं। कौन से अष्टविकार? पुलक, रोमांच, स्वेद, गदगद कंठ, ये अष्टविकार जिसे एक्स्टेसी कहते हैं भगवद गीता पढ़ने मात्र से उसे मिल सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे राधा कृष्ण की लीला, बस वो राधा कृष्ण की लीला मुझे सुननी है, भगवान श्री कृष्ण रासलीला कैसे रचाए, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ कौन कौन सी लीला की, बस उसमें मुझे वो भाव विभोर अवस्था मिलती है। यहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कि गीता के 18 अध्याय क्या पढ़ रहे हैं, गीता में शरीर नहीं आत्मा, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कितनी बार हम देहिनोस्मिन यथा देखकर पुलक अश्रु कंप श्वेद ये सब होता है। ये भगवद गीता की महिमा यहां पर बताई जा रही है। और उनका गीता आवर्तन, उनके गीता का पाठ परिपक्व कैसे था, इसका लक्षण यहां पर दिया गया है कि आनंदित होइल महाप्रभुर मन। स्वयं श्री कृष्ण महाप्रभु वो बहुत आनंदित हुए इनके भगवद गीता का अध्ययन को सुनकर और देखकर। तो ये अगली शिक्षा हम ये यहां पर सीखते हैं कि कृष्ण भक्ति का ध्येय क्या होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना। यहां पर इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट किया गीता का उस प्रकार से अध्ययन कर, शुद्ध भाव से अध्ययन कर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को संतुष्ट किया। तो कृष्ण भक्ति का ध्येय होना चाहिए, श्री कृष्ण की संतुष्टि। यदि श्री कृष्ण की संतुष्टि नहीं हो रही तो कहीं पर हमारी कृष्ण भक्ति में खेद है। और फिर अंतिम शिक्षा, जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि भाई तुम ठीक से गीता पढ़ नहीं पा रहे, परंतु तुम्हारे अंदर ये अष्ट विकार कैसे जागृत हो रहे हैं, ये भक्ति के भाव कैसे जागृत हो रहे हैं। तब वो कहते हैं, विप्र कहे मूर्ख आमी शब्दार्थ न जानी। विप्र कहे, ब्राह्मण ने कहा, मूर्ख आमी, मैं तो मूर्ख हूं, शब्दार्थ मैं नहीं जान सकता कि ये संस्कृत इन शब्दों का अर्थ क्या है। शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। शुद्ध और अशुद्ध गीता में पढ़ रहा हूं क्यों, मेरे गुरु ने आज्ञा दी है, क्योंकि मेरे गुरु ने आज्ञा दी है इसलिए मुझे क्या दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात अर्जुन का रथ हांक रहे हैं, वो देखने मात्र से मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, पुलक हो रहा है मेरे शरीर पर, मेरा कंठ गदगद हो जा रहा है ये दृश्य देखते हुए। चलो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि हमें हमारी आध्यात्मिक साधना में पूर्णता लानी है तो ये शिक्षा, गुरु की आज्ञा में श्रद्धा। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथित यार्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। कि जब श्री गुरु में हमारी पूर्ण श्रद्धा होगी तो जो कुछ वैदिक शास्त्रों में दिया गया है, पूरा वैदिक वांग्मय हमारे लिए, वो गुरु की श्रद्धा सामने साफ साफ प्रस्तुत होकर आएंगी। तो ये है 6 शिक्षाएं इन ब्राह्मण से हम सीखे। अब चैतन्य महाप्रभु ने इनको पुरस्कृत कैसे किया, बहुत ही सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु इन्हें पुरस्कृत कर रहे हैं कि इस प्रकार की शुद्ध भावना में जब भक्त गीता का आवर्तन करता है, श्रवण करता है, भगवान का गुणगान करता है, तो चैतन्य महाप्रभु कैसे उसे पुरस्कृत करते हैं। तो आज यदि हमें भी चैतन्य महाप्रभु द्वारा पुरस्कृत होना है तो सबसे पहले जान लेना है कि इस ब्राह्मण ने किस भाव से गीता का आवर्तन किया, श्रवण किया, भगवान का गुणगान किया, शुद्ध भाव से गुरु की आज्ञा पालन करते हुए, और फिर उन्हें कौन से 6 पुरस्कार चैतन्य महाप्रभु दिए। सर्वप्रथम पुरस्कार क्या मिला कि भगवद गीता खोलते ही हर एक पन्ने में वो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। तो हम जब गीता खोलते हैं तो किसका दर्शन होता है, क्या भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है? अर्जुन का रथ हांकते हुए भगवान श्री कृष्ण, क्या उनका हमें दर्शन हो रहा है? तो समझ लेना चाहिए कि यदि नहीं हो रहा तो कहीं पर कैलकुलेशन कुछ फॉर्मूला में गड़बड़ है। तो ये एक पुरस्कार कि भगवद गीता के हरेक पन्ने में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन इन्हें हो रहा था। दूसरा पुरस्कार, स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु वो इनसे कहे, प्रभु कहे गीता पाठ तोमार ए अधिकार, तुमी से जाना है ए गीता अर्थ सार। चैतन्य महाप्रभु कहे कि मैं देख रहा हूं कि केवल तुम्ही को अधिकार है गीता के वास्तविक अर्थ के सार को जानने का, तुम्ही ने जाना है। तो गीता के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, ओरिजिनल ऑथर कौन है गीता के? कृष्ण। वो यहां पर सर्टिफिकेट साइन करके दे रहे हैं किसको? जैसे हम में से यहां पर बहुत से भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट होल्डर होने वाले हैं। क्या है, जिन्होंने गीता पूरा 18 अध्याय गीता का जिसने पढ़ लिया अच्छी से, उनको भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट मिलता है। कल्पना करो कि भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट साइंड बाय श्री कृष्ण। तो यहां पर स्वयं वो सर्टिफाई कर रहे हैं, वो प्रमाणित कर रहे हैं कि केवल तुम्हें अधिकार है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें अधिकार है। हालांकि तुम अशुद्ध तरीके से पढ़ रहे हो, तुम्हें अधिकार है भगवद गीता के वास्तविक अर्थ के सार को जानने का। बहुत बड़ा पुरस्कार इन्हें मिला स्वयं मुख्य प्रवक्ता के मुख से। आगे भगवान ने फिर क्या किया? आलिंगन। स्वयं भगवान गए और भगवान ने इन्हें आलिंगन, इतबलि सेवि विप्रे कैल आलिंगन प्रभु पद धूरि विप्र करे न रोदन। और रुदन करने लगे। ये पहले से ही रो रहे थे, परंतु अब जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनको आलिंगन कर लिया तो अब कृष्ण प्रेम के शुद्ध आंसू इनके आंखों से बहने लगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें पुरस्कृत किया, जैसे प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को कैसे पुरस्कृत किया जब वो सीता का समाचार लेकर आए आलिंगन करकर। प्रभु श्री राम ने कहा कि मेरे पास और कुछ नहीं है हनुमान तुम्हें देने के लिए, मैं खुद एक विरक्ति का जीवन जी रहा हूं, मेरे पास केवल मेरा एक आलिंगन है। और यदि किसी भक्त को भगवान का आलिंगन मिल जाए तो और कोई चीज की आवश्यकता नहीं। तो ये तीसरा पुरस्कार इन्हें मिला। आगे इन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वयं साक्षात कृष्ण माना। कविराज गोस्वामी कहते हैं, तोम देखी ताह हैते द्विगुण सुख होय, से कृष्ण तुमी है न मोर मन लय। वो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को कि जिनका मैं दर्शन हर एक पन्ने में कर रहा हूं, भगवद गीता के हर एक पन्ने में मैं जिस कृष्ण का दर्शन कर रहा हूं, आप वही हैं। अब देखिए, श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात श्री कृष्ण ये जानना बहुत बड़ा पुरस्कार है। बहुत दुर्लभ कोई होता है जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात कृष्ण माने या जाने या उसका साक्षात्कार हो। तो ये चौथा पुरस्कार इन्हें मिला। पांचवा पुरस्कार बहुत ही विशेष। चैतन्य महाप्रभु 4 महीने रहे श्रीरंगम में और हर दिन चैतन्य महाप्रभु आए और अपने मुख से उन्होंने गीता सुनाई। केवल इस ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु अकेले बैठकर, स्वयं श्री कृष्ण अकेले बैठकर गीता सुना रहे थे 4 महीना। तो इनका सौभाग्य देखिए, अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई कितने समय? 45 मिनट। 45 मिनट में अर्जुन को भगवद गीता सुनाई। यहां पर अर्जुन से भी सौभाग्यशाली ये ब्राह्मण जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु हर दिन 4 महीना आकर भगवद गीता सुनाए अपने श्रीमुख से। और फिर अंतिम पुरस्कार कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इस विप्र में, इस ब्राह्मण में श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध कृष्ण भक्ति या कृष्ण प्रेम संचारित कर दिया। से विप्र महाप्रभुर बड़ भक्त हैल, चारी मास प्रभु संग कभू न छाड़िल। कि चार महीना इन भक्त को चैतन्य महाप्रभु का व्यक्तिगत संग मिला। केवल व्यक्तिगत संग नहीं, बल्कि चैतन्य महाप्रभु के श्रीमुख से भगवत संदेश। तो अब ये जो पुरस्कार, छठा पुरस्कार, इसके विषय में तो कोई संशय था ही नहीं कि इनके अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण प्रेम संचारित करते। तो हम क्या इस प्रसंग से सीखे कि यदि हमारी भावना भगवान श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन के समय इस ब्राह्मण की तरह होगी तो सर्वप्रथम हमें श्री चैतन्य महाप्रभु का साक्षात दर्शन होगा और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, इसका साक्षात्कार होगा। स्वयं श्री कृष्ण के श्रीमुख या उनके उनका जो अंदरूनी जो भाव है वो हमें मिलेगा और अंततः यहां पर जो बताया गया है शुद्ध कृष्ण प्रेम का संचार। तो आज के इस विशेष महोत्सव में हमें भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से क्या प्रार्थना करनी चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु आप जिनके लिए अवतरित हुए हो, किनके लिए अवतरित हुए चैतन्य महाप्रभु, ऐसे जो शुद्ध हैं या जो पतित हैं परंतु जो मासूम हैं उन्हें शुद्ध करने के लिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है कि वो पतित पावन है, वो कपट पावन नहीं। तो हमारा भी हृदय यदि सरल होगा, सरल कोरे मन, हमारे आचार्य वो कहते हैं कि हमारा मन, हमारा हृदय यदि सरल होगा तो श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे इस ब्राह्मण का हृदय, इसका मन इतना सरल था, तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पूर्ण रूपेण इनके हृदय में समा सके। तो यही प्रार्थना हमें श्रीमान गौरांग महाप्रभु से आज के दिन करनी चाहिए कि सर्वप्रथम मेरा हृदय सरल बनाइए, मेरा हृदय सरल बनाइए और उस सरल हृदय में आपकी कृपा का संचार कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्रीमान गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, दाई गौर प्रेमानंदी। की बजायो जयो गौरा चांदेर आरती को शोभा। जानवी तटवने जगमान लोभा, कि बदखी निकाय चान बम गदाधर, कि बदखी निताई चान
बामे गदाधर निकटे अद्वैत श्रीनी वास छत्र धर बसिया छे गौरा चांद रत्न सिंहासन बसी गौराचान रत्न सिंहासन करे न ब्रह्मा आदि देव गणे किव नर हरि आदि कोरी चमर ढुलाय कि बनर हरि आदि कोरी चमर ढुलाय संजय मुकुंद वासु घोष आदि गाया कि शंख बाजे घंटा बाजे बाजे कर काल कि शंख बाजे घंटा बाजे बाजे कर ताल मधुर मृदंग बाज परम रसाल मधुर 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 बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे गौर हरि शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे शंख बाजे घंटा बाजे मधुर 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 बाजे हरि बोल हरि बोल हरि बोल चंद्र झिनी वदन उज्वला इव बहु कोटि चंद्र झिनी वदन उज्वल गल देशे वन माला परे झलमाला गल देशे वनमाला परे झलमाला शिव शुक नारद प्रेम गद गद भक्ति विनोद देख गौरार संपद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे